ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समिति ने एकीकृत उपयोगी राजमार्ग निर्माण संबंधी विधेयक को संसद के चालू अधिवेशन में पेश करने का शहरी मंत्रालय को किया निर्देश। खेलकूद संबंधी व्यवस्था के लिए बना विधेयक 2075 हुआ सर्वसम्मति से पारित। सामंतवाद का अंत होकर नेपाल अब समाजवाद की दिशा में उन्मुख, नेकपा अध्यक्ष प्रचंड का कथन। और चीन में कोरोना वायरस के कारण कई जिंदगियां खतरे में, साथ ही अर्थव्यवस्था भी हुई कमजोर। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समिति ने एकीकृत उपयोगी राजमार्ग निर्माण संबंधी विधेयक को संसद के चालू अधिवेशन में पेश करने का शहरी विकास मंत्रालय को निर्देश किया है। आज सिंह दरबार में हुई समिति की बैठक में सड़कों के ऊपर मौजूद तार, बिजली के खंभों और अव्यवस्थित गटर और पेयजल की पाइप लगायत के कारण कुरूप बने शहर के सुधार के मद्देनजर जल्द से जल्द उपयोगी राजमार्ग निर्माण संबंधी विधेयक को चालू अधिवेशन में ही पेश करने का शहरी विकास मंत्रालय को निर्देश किया है। मौके पर संचार तथा सूचना प्रविधि और शहरी विकास मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा ने कहा कि जरूरत देश भर में है और इससे संबंधित विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है, जिसे चालू अधिवेशन में ही पेश करने के हिसाब से तैयारी हो रही है। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति ने खेलकूद संबंधी व्यवस्था के लिए बने विधेयक 2075 को सर्वसम्मति से पारित किया है। आज सिंह दरबार में हुई समिति की बैठक ने विधेयक को संशोधन सहित पारित किया है। बैठक में युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा ने विधेयक पारित होने के बाद नेपाल के खेलकूद क्षेत्र में मौजूद सिंडिकेट का अंत होने का विश्वास जताया। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना के निमंत्रण पर कनाडा के ऊपरी सदन सीनेट के सभामुख जॉर्ज जे फ्यूरी के नेतृत्व में नेपाल दौरे पर आए प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रीय सभा बैठक का अवलोकन किया। बैठक में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सांसद दीनानाथ शर्मा ने कहा कि नेपाल और कनाडा के बीच दौत्य संबंध स्थापित हुए 65 साल पूरे हो चुके हैं और आने वाले दिनों में दो देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि सामंतवाद का अंत होकर नेपाल अब समाजवाद की दिशा में उन्मुख हुआ है। आज काठमांडू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना से लेकर नेपाल के प्रत्येक परिवर्तन में नेपाल के सभी जाति, समुदाय और भूगोल की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सरकार ने चीन से नेपाल आने वाले नेपालियों के लिए राष्ट्रीय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइंस के विमान को चीन भेजने का निर्णय लिया है। निगम की प्रवक्ता अर्चना खड़का ने बताया कि निगम जल्द ही अपनी वाइट बॉडी जहाज को चीन में भेजने की आंतरिक तैयारी कर रहा है। बता दें कि चीन से वापस लौटने के लिए 180 नेपालियों ने नेपाली दूतावास में अर्जी दी है। चीन से वापस लाए जाने वाले नेपालियों को 14 दिनों तक परीक्षण में रखा जाएगा और यदि कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं दिखा तो उन्हें सार्वजनिक भेंटघाट के लिए अनुमति दी जाएगी। सरकार ने वायरस संक्रमितों के लिए 3 अस्पतालों में 43 शैया की व्यवस्था की है। पोखरा, चितवन और भैरवा में हेल्थ डेस्क की व्यवस्था की गई है, जबकि रसुआ और तातोपानी नाकों पर संभावित जोखिम के मद्देनजर काम हो रहा है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। राष्ट्रीय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम ने आगामी फागुन 19 गति से जापान की नारिता के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी की है। निगम के एयरबस वाइट बॉडी विमान के जरिए नारिता के लिए हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन सीधी उड़ान शुरू करेंगी। इसकी जानकारी विमान के निगम के बयान के जरिए दी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि 14-15 #डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार निंगवांग ने कहा कि सार्वजनिक खरीद नियमावली की नवी संशोधन के आने के बाद कोई भी परियोजनाएं शून्य में नहीं रहेंगी। आज सड़क बोर्ड निर्माण द्वारा आयोजित वार्षिक समीक्षा गोष्ठी में मंत्री निम्बांग ने कहा कि सड़क की मरम्मत, सड़कों की सुरक्षा, सड़कों में होने वाली विभिन्न दुर्घटनाएं और सड़कों की अवस्थाओं को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। झापा की सरकारी, सार्वजनिक और गुठी के स्वामित्व में रही 1000 बीघा जमीनों का अतिक्रमित होने की जानकारी सरोकार वालों ने दी है। झापा की गौरादह, कनकाई, दमक, बीरता मोड़, मीची नगर, कमल और भद्रपुर की जमीनें अतिक्रमित हुई हैं। इसकी जानकारी कमल गांव पालिका की अध्यक्ष मेनुका काफले ने दी। उन्होंने बताया कि लखनपुर स्थित सशस्त्र प्रहरी की प्रदेश स्तरीय तालीम केंद्र की 250 बीघा और रतवा माई वृक्षारोपण आयोजना की 664 बीघा जमीनों को व्यक्तियों ने अतिक्रमित किया है। विदेश में रोजगारी का झांसा देकर 8 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में सुलुखम्बू के निवासी और हाल लोकनथली में रहने वाले बालकृष्ण कार्की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि कतार, मालदीव्स आदि देशों में भेजने का प्रलोभन देकर 8 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में पीड़ितों ने कार्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद कार्की को गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी महानगरीय अपराध नियंत्रण महाशाखा ने दी है। नरहा गांव पालिका 5 चोहरवा स्थित सड़क में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में सिरहा नगर पालिका 3 रमौल के अमन मंडल और शैलेंद्र कुमार मंडल की मौत हो गई। इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि बस चालक अभी फरार है और इसकी तलाश जारी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में कोरोना वायरस की वजह से कई जिंदगियां खतरे में होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी इसकी मार झेल रही है। चीन की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान की एक बड़ी वजह वायरस को फैलने से रोकने के लिए होने वाले खर्च को बताया गया है। वुहान शहर से बाहर जाने को लेकर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। वुहान में करीब 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। हुबेई प्रांत के अन्य हिस्सों में भी ये लॉकडाउन कर दिया गया है। यहां कारोबार संबंधी यात्राओं, सामान और लोगों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। वायरस के डर से लोग बाहर जाने से भी बच रहे हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, परिवहन, होटलों और दुकानों पर इसका साफ असर दिखा जा सकता है। वहीं चीन में नया साल शुरू होने से ठीक पहले कोरोना वायरस फैलने से बिजनेस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा चीन में नए साल की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई थी, जिससे कई बिजनेस में काम शुरू होने में देरी हुई है। काम शुरू नहीं होने पाने से उत्पादन और बिक्री में कमी आई है और कंपनियों के पास नकद भी नहीं है। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे कारोबारों पर पड़ा है, जबकि कंपनियों के कुछ खर्चे ऐसे हैं जो उन्हें पहले की तरह ही करने हैं, जैसे वो बिलों का भुगतान कर रही हैं और कर्मचारियों को वेतन दे रही हैं। चीन के निर्माताओं को चीन के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी नुकसान हो रहा है। विदेशों में लोग चीन में बना सामान खरीदने से बच रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समिति ने एकीकृत उपयोगी राजमार्ग निर्माण संबंधी विधेयक को संसद के चालू अधिवेशन में पेश करने का शहरी मंत्रालय को किया निर्देश। खेलकूद संबंधी व्यवस्था के लिए बना विधेयक 2075 हुआ सर्वसम्मति से पारित। सामंतवाद का अंत होकर नेपाल अब समाजवाद की दिशा में उन्मुख, नेकपा अध्यक्ष प्रचंड का कथन। और चीन में कोरोना वायरस के कारण कई जिंदगियां खतरे में, साथ ही अर्थव्यवस्था भी हुई कमजोर। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।